समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है प्रोग्राम परिक्रमा में। इस वक्त जब आप हमें सुन रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके आसपास भी बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया होगा, और उसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपका मिजाज भी खुशनुमा हो जाए। परिक्रमा के इस अंक में आप जुड़ चुके हैं सर फिरोजी और शेफाली सिंह के साथ। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का ढेर सारा खजाना और रोमांचक जानकारियां। इस कार्यक्रम में रोज की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से भी हम लेंगे देश की हलचल, खेल और आर्थिक जगत की भी आपको देंगे जानकारी। तो शेफाली, प्रोग्राम को शुरू किया जाए।
जी हेलो सर फिरोजी, एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द रेन्स, एंड आई ऑल्सो होप दैट यू ऑल आर कमिंग हियर विद ओपन ईयर्स एंड अ फोकस्ड माइंड, बिकॉज दीज डेज वी हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, राइट? बट आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक अ परिक्रमा एंड कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज न्यूज रिपोर्ट्स, कैप्स्यूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम एंड वी विल बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस। First, results in by-election to 13 assembly seats in 7 states announced. One seat goes to AAP in Punjab, Congress bags 2 seats, and BJP wins 1 seat in Himachal. Raiganj and Bagda seats in West Bengal go to TMC.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।
Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review implementation of Vibrant Villages program.
चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.5% बढ़कर 11 जुलाई तक 5,74,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा।
And in Wimbledon tennis, Jasmine Paolini to take on Barbora Krejcikova in the women's singles final in London this evening. And dear listeners, now we would be moving ahead to our next segment, which is Dateline India. And today, Sir Firozi, we'll be talking about World Skydiving Day and DD Robocon India 2024. So let's start with World Skydiving Day. The first annual celebration of World Skydiving Day is taking place today, that is the 13th of July 2024, and will be repeated every second Saturday of July. The inaugural World Skydiving Day was announced by 4 organizations: the US Parachute Association, USPA, the Australian Parachute Federation, the British Skydiving and the Canadian Sport Parachuting Association. The event aims to set the record for most skydives on this day and celebrate the thrilling experience of the sport.
स्काईडाइविंग को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड स्काईडाइविंग डे हर साल 13 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाता है, और ये दिन इस स्पोर्ट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए एक मंच देता है।
यूनियन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत डिड स्काईडाइविंग ऑन वर्ल्ड स्काईडाइविंग डे टुडे जुलाई 13। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत डिस्प्लेड हिज स्काईडाइविंग स्किल्स इन नारनौल, हरियाणा। Speaking to the media, the union minister said that today is an important day for India as the very first private skydiving facility was opened in Narnaul. Being India's tourism minister, it is my responsibility to ensure the availability of facilities for everyone to experience them, he added. This year's World Skydiving Day is the first annual celebration that is likely to be repeated every year on the second Saturday in July.
आज पूरी दुनिया पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे सेलिब्रेट कर रही है, और वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के दिन में आज भारत में यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्ज्वल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूँ।
And Sir Firozi, skydiving is a very exciting sport, है ना? तो हमने movies में भी देखा है कि किस तरह actors जाते हैं, भले ही वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो या कोई और फिर सारी परेशानियों को परे छोड़कर बस कूद जाते हैं। लेकिन ये ऐसा sport भी है जिससे काफी लोगों को बहुत डर भी लगता है। तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी दैट येस, वी आर वेल अवेयर दैट स्काई डाइविंग इज एन एक्सट्रीम स्पोर्ट एंड इट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, which makes Shekhawat's stunt even more special. The minister was guided by a professional as he went high up in the skies and landed softly on the ground before being helped up. He was full of excitement as he saw a bright future for India's tourism sector and aerosports through the Narnol-based facility.
और जिस तरह हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टैंडम स्काई डाइविंग की है और भारत का नाम वर्ल्ड स्काई डाइविंग मैप में दर्ज हो चुका है, तो हम भी श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि आप भी पीछे ना रहें। अगर आपको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनना है और अगर अभी तक आपने भी स्काई डाइविंग नहीं की है, तो आज का मौका अपने हाथ से ना जाने दें और अपने नजदीकी स्काई डाइविंग जोन पर जाकर ये एक्सपीरियंस जरूर लें। इसके बाद आपको अपनी स्काई डाइविंग का सर्टिफिकेट worldskydivingday.com पर अपलोड करना है और इस तरह आप विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और अब श्रोताओं, अगर आप ये सुनकर सोच में पड़ गए हैं कि आप कहां जाकर स्काई डाइविंग करेंगे, आपने कभी स्काई डाइविंग नहीं की है, तो इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत में स्काई डाइविंग के लिए कुछ लोकप्रिय जगह मौजूद हैं। अगर आप दिल्ली या हरियाणा के आसपास रहते हैं तो आप नारनौल में जाकर स्काई डाइविंग का मजा ले सकते हैं। ये भारत का इकलौता इंटरनेशनल स्काई डाइविंग ड्रॉप जोन है। यहां से आप 14,000 फीट की ऊंचाई से 45 सेकंड की स्काई डाइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में भी कई जगह हैं जो स्काई डाइविंग के लिए बहुत फेमस हैं। इनमें से एक पांडिचेरी में है जहां आप 10,000 फीट की ऊंचाई से 30 सेकंड की स्काई डाइविंग कर सकते हैं और बंगाल की खाड़ी के शानदार नजारों का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैसूर कर्नाटक जा सकते हैं जहां से आप 12,000 फीट की ऊंचाई से 40 सेकंड की स्काई डाइविंग का अनुभव कर सकते हैं और मैसूर शहर के आसपास के इलाकों के बेहतरीन नजारों का मजा ले सकते हैं। और दक्षिण भारत से थोड़ा ऊपर आएंगे तो गुजरात दीसा में भी एक बहुत फेमस स्काई डाइविंग के लिए जगह मौजूद है। यहां से आप 10,000 फीट की ऊंचाई से 30 सेकंड की स्काई डाइविंग का अनुभव कर सकते हैं और अरावली पहाड़ियों के दृश्यों का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और रोमांचक करना है तो फिर आप जा सकते हैं जोधपुर, राजस्थान। और राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्काई डाइविंग के लिए एक बहुत फेमस जगह है। यहां आप 12,000 फीट की ऊंचाई से 40 सेकंड की स्काई डाइविंग का अनुभव कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि थार रेगिस्तान ऊपर से कैसा नजर आता है। और श्रोताओं, अब बात करें भारत में स्काई डाइविंग की कॉस्ट की, तो ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस ऊंचाई से स्काई डाइविंग कर रहे हैं और आपने कौन सा पैकेज लिया है। अगर आप टैंडम स्काई डाइव कर रहे हैं यानी आपके साथ स्काई डाइविंग के दौरान एक एक्सपीरियंस ट्रेनर मौजूद रहेगा, तो इसका कॉस्ट 10,000 रूपये से 25,000 तक होगा। और अगर आप स्टैटिक लाइन स्काई डाइविंग कर रहे हैं यानी जहां आप स्काई डाइविंग के दौरान एक रस्सी से जुड़े रहेंगे, इसकी कीमत 5,000 से 10,000 तक होती है। और श्रोताओं, स्काई डाइविंग के रोमांच के दौरान आपको कुछ जरूरी चीजें भी याद रखनी है। इनमें से कुछ ये हैं कि आपको केवल लाइसेंस प्राप्त स्काई डाइविंग जोन के साथ ही स्काई डाइविंग करनी है और ये बहुत जरूरी है कि आप स्काई डाइविंग करने के लिए पूरी तरह हेल्दी हों।
And other elements that are very important are a jumpsuit, first of all, the less than stylish full body suit you may wear over your clothes while skydiving. Jumpsuits can help control how fast you are falling and protect you from the wind in colder months. If you jump in the summer, you may not need to wear one.
और शिफाली, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका हमें स्काई डाइविंग के दौरान ध्यान रखना है कि हम मौसम की जानकारी जरूर लें। जैसे कि आज देश के बहुत सारे राज्यों में बारिश हो रही है तो हमें ध्यान रखना है कि स्काई डाइविंग से पहले हम मौसम देख लें और अगर बहुत खराब मौसम है तो उसमें स्काई डाइविंग ना करें।
बिल्कुल, दीज आर सब प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बट प्रिकॉशंस का ध्यान रखते रखते वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन फ्री फॉल, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जम्प, फॉलिंग थ्रू द स्काई बिफोर योर कैनोपी ओपन्स।
तो शेफाली, आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में हर चीज का अनुभव लीजिए पर सुरक्षा से किसी तरह का समझौता ना करें।
टोटली। एंड नाउ डियर लिसनर्स, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे, दैट इज टुडे, व्हिच इज द डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। इन एसोसिएशन विद प्रसार भारती, आईआईटी दिल्ली इज होस्टिंग डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 ऑन जुलाई 13 and 14, 2024 एट दिल्लीज त्यागराज स्टेडियम। मोर देन 750 स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 45 कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन डीडी रोबोकॉन। दिस इज अ नेशनल लेवल इवेंट हैपनिंग फॉर the last 23 years in the country. DG Robocon India 2024, powered by IIT Delhi and Prasar Bharati, promotes technical skill development, innovation and teamwork among engineering students, providing visibility and recognition in the field of robotics. It is an esteemed platform for showcasing and advancing the students' engineering and robotics capabilities. In a thrilling contest during Robocon, robots face off in a race against time, striving to conquer complex tasks within precise windows. The winning team from DD Robocon 2024 will represent India at the International ABU, Asia Pacific Broadcasting Union, Robocon 2024, which will take place in Quang Ninh, Vietnam on August 25, 2024. And the theme of the ABU Robocon decided by Vietnam's ABU Robocon organizing team is Harvest Day.
DD Robocon India ka maksad robotics और इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, इनोवेशन और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। ये प्रतियोगिता छात्रों की इंजीनियरिंग और रोबोटिक स्किल्स को दिखाने और आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा मंच है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। शिफाली, जब किसी भी दोषी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसके पीछे का मकसद सिर्फ उसे सजा देना ही नहीं होता, बल्कि उम्मीद की जाती है कि जब वो सजा काटकर बाहर निकलेंगे तो उनमें कई तरह के सुधार देखने को मिलेंगे।
रिफॉर्म,
जी बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में लातूर जिला कारागार ने इसी दिशा में एक अनोखी पहल की है। लातूर के जिला कारागार से गुजरते वक्त अगर आपको बहुत ही सुगंधित खाने की महक आए तो आपको चौंकना नहीं है, क्योंकि यहां कारागार में नया रेस्टोरेंट खुला है जो पूरी तरह से यहां के कैदियों द्वारा चलाया जाता है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे लातूर के संवाददाता शशिकांत पाटिल।
कारागार में सजा काट रहे बंदियों को काम करने का अनुभव मिले और सजा पूरी होने के बाद रोजगार मिलने तक उनके पास कुछ पूंजी जमा हो, इस उद्देश्य से कारागार में बंदी जनों के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। कहीं पर कपड़ा बनाया जाता है, कहीं फर्नीचर बनाया जाता है, तो कहीं पर और कुछ काम होता है। ये सभी काम जेल के अंदर किए जाते हैं, जिससे आम जनता का बंदियों से कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन लातूर जिला कारागार ने दो ऐसे नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जहां पर बंदी जन हर रोज सीधे आम जनता के साथ व्यवहार करेंगे, जिसमें से एक है रेस्टोरेंट और दूसरी है लॉन्ड्री। रेस्टोरेंट में आम जनता हर रोज आकर हर तरह के व्यंजनों का आस्वाद ले सकते हैं, साथ ही लॉन्ड्री से अपने कपड़े धुलाकर इस्त्री भी करवा सकते हैं। विशेष है कि जिन कैदियों की सजा की अवधि पूरी हो रही है, ऐसे कैदी ही इस प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं। जिला कारागार की इस पहल की काफी सराहना हो रही है।
जेल में सजा भुगतने के माध्यम से अपने जीवन पर लगे दाग धोने का प्रयास कर रहे बंदीजनों को समाज की मुख्य धारा में वापसी के लिए लातूर जिला कारागार की ओर से उठाया गया ये कदम निश्चित ही अभिनंदनीय है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से हर्षवर्धन दीक्षित।
And dear listeners, in Mizoram, women are taking a big role in all walks of life. Many women are supporting their families and took active part in society and even in politics. Most recently, the Golden Jubilee celebration of MHIP, which is the state's largest women's organization, was held across the state. The state-level celebration was held at Assam Rifles, Lamual, in the heart of Aizawl city.
Speaking on the historic occasion, Home Minister K. Sardanga lauded the women's community of Mizoram for their active participation in the overall development of the state. The Home Minister said that MHEP has contributed a yeoman service for the state and appreciated its activities for the last 50 years. Sardanga said that women are the torchbearer of society and family. He said that their dedication in the spirit of Mizo Tlongga Ina in the society is much appreciable. The Lone Woman Cabinet Minister, Lalvin Pui, who also attended the celebration, said that Mizo women has made great progress in all walks of life in recent times. She said that Mizo women are now taking an active role in social fronts and even in politics. Emphasizing the role of mothers, the minister said that the fight against drugs has to begin from each and every home. Commenting on the role of women in Mizoram, F. Lal Ramhuni, Assistant Professor of Faith College, Aizawl, said that women are the backbone of Mizo society. She says,
3 women were elected in the 2023 State Legislative Assembly, and for the first time in the history of Mizoram, the state has a women cabinet minister. Comparing with other states in the country, women in Mizoram plays a vital role in socio-economic platform, which in turn paves a way for a political role. Presently, all political parties have instituted women's wing, which open doors for their participation. Apart from this, central scheme have helped a lot in inclusion of women in different sectors, and most importantly, the Women's Reservation Act passed by the parliament will be a blessing.
The MHEP Golden Jubilee celebration was also held in all district headquarters and at several places in the state. Irene Akashwani, Aizawl.
गुजरात में 3 कृषि उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। पहला गिरनार का केसर आम, दूसरा भालिया गेहूं के बीज और तीसरा कच्छ की देसी खारेक। अभी खारेक फलों का मौसम चल रहा है, बाजार में बड़ी मात्रा में खारेक उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि पूरे देश में खारेक की खेती लगभग 400 साल पहले कच्छ की धरती पर ही शुरू हुई थी। जीआई टैग मिलने के बाद कच्छी खारेक विदेशों में मशहूर हो गई है और यहां से बड़ी मात्रा में कच्छी खारेक का निर्यात किया जाता है।
वर्ष 2023-24 में 59,000 हेक्टेयर के साथ कच्छ जिला फल फसल के अंतर्गत राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें खारेक भी शामिल है। खारेक की खेती मुंद्रा, मांडवी, भुज और अंजार तालुकों में सबसे अधिक की जाती है। जिला उद्यान अधिकारी MS परसानिया ने खारेक के बारे में बात करते हुए कहा कि कच्छ जिले में खारेक बागान का क्षेत्रफल 19,000 हेक्टेयर के आसपास है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर पश्चिम भारत में उगने वाले ताड़ के पेड़ों की जड़ों में मध्य पूर्व में हज के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा फेंके गए बीज है। यह भी संभव है कि कच्छ के राजकुमारों के महलों में काम करने वाले अरब माली भी खजूर के बीज और अंकुर साथ लाए थे। कच्छ में इस खारेक के लगभग 20 लाख पौधे हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख पौधे देसी किस्म के हैं। भारत में लगभग 85% खारेक बागान कच्छ जिले में उत्पादित होते हैं। खारेक की खेती करने वाले मुंद्रा तालुका के द्रब गांव के किसान हाजी हुसैन भाई तुर्क कहते हैं कि खारेक की खेती भारत में सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने की थी। आज देश विदेश से कृषि वैज्ञानिक हमारे फार्म पर आते हैं और यहाँ की फसलों पर शोध करते हैं। फिलहाल यूरोप से वैज्ञानिक यहाँ आए हुए और अभी रिसर्च कर रहे हैं।
खारेक की खेती पीढ़ियों से हम करते हैं और इसकी स्टार्टिंग अपने भारत में और कच्छ में गुजरात में मेरे ही गांव से और मेरे बुजुर्गों के हाथ से हुई थी। आज से 400 साल पहले 2023 में जीआई टैग भी मिल गया है कच्छी खारेक को। इससे भी किसानों का बहुत भला होगा और जो स्वीट खारेक होती है उनके भाव भी अच्छे हैं। ये हमारे कच्छ की खास पहचान है और हमारे कच्छ से ये पूरे इंडिया में ये खारेक फैली है। इसका हमको गौरव भी है। मेरे फार्म पे गुजरात के इंडिया के साइंटिस्ट तो आते हैं, लेकिन इजराइल के साइंटिस्ट मेरे यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं वो यूरोप से आए हैं और मोरक्को से, सऊदी अरब से, इराक से हैं और पूरे इंडिया में जिधर जिधर अभी टिश्यू कल्चर लैब के जो साइंटिस्ट हमारे यहाँ काम करते हैं और खारेक के लिए टिश्यू लैब की शुरुआत की है, जैसे आनंद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जैसे अभी भरूच में GNFC की इन लोगों ने भी लैब अभी चालू है।
इस वर्ष कच्छ में 20,000 हेक्टेयर में अनुमानित 2 लाख टन के आसपास खारेक का उत्पादन हुआ है। भरत देवमणि के साथ मैं परेश मारू, आकाशवाणी समाचार विभाग, भोज।
एंड डियर लिसनर्स, नाउ वी विल टेक यू ऑन अ टूर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे।
आजादी का अमृत महोत्सव,
India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed.
Akhilo Brahmando Poti Pranami Chalune Tabo Prema Bhakti Bhare Charanu Lage.
13 July is the day when in 1905 Krishna Kumar Mitra openly called for the first boycott of foreign goods through his journal Sanjeevani. Krishna Kumar was a freedom fighter and a leader of Brahmo Samaj. Revolutionary freedom fighter Aurobindo Ghosh was his nephew.
We also remember martyr Ashfaqullah Khan, who was sentenced to death on the 13th of July, 1927. Born in a wealthy and educated family in 1900 at Shahjahanpur, Uttar Pradesh, Ashfaqullah was involved in nationalist activities from his school days. When Gandhiji launched the non-cooperation movement, he gave up his studies. Ashfaqullah was one among the leading figures who executed the plan of the Kakori train robbery on the 9th of August, 1925. He went underground after the incident, absconded for some time, and planned to go to Russia via Afghanistan. But, betrayed by a friend, he was caught in December 1925 by the police. He was tried in the Sessions Court at Lucknow and sentenced to death on the 13th of July, 1927. Ashfaqullah was hanged in Faizabad jail on the 19th of December, 1927, when he was only 27 years old.
Also on the 13th of July, 1929, Jatindranath Das began a hunger strike. Jatindranath Das, as a young man, was very committed to the national cause of freedom from British rule. At the age of just 17 years, he was an enthusiastic participant of the non-cooperation movement. He later joined the revolutionary organization Anushilan Samiti and then teamed up with Bhagat Singh and his comrades in the Hindustan Republican Socialist Association.
On the 14th of June 1929, he was arrested for revolutionary activities and was imprisoned in Lahore jail to be tried under the supplementary Lahore conspiracy case. In the Lahore jail, Jatin Das, along with other prisoners, started a hunger strike. This hunger strike started on the 13th of July, 1929 and lasted 63 days. The jail authority took many measures to feed Jatin, including attempts to feed forcefully. However, Jatin did not eat and succumbed on the 13th of September. Thousands of people rushed to every station to pay their homage to the great martyr.
His body was received at the cremation ground by Subhash Chandra Bose, who described Jatinda as the young Gadhichi of India.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
और शिफाली अब अपने श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान की ओर और उन्हें देंगे वहां की जानकारी। तो हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने पांचवें ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। पांच मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। श्रृंखला का पांचवा और अंतिम मैच हरारे में ही कल खेला जाएगा।
And in Wimbledon tennis, 7-seeded Jasmine Paolini will take on 31st seed Barbora Krejcikova in the women's singles final in London this evening at 6:30 p.m. Indian Standard Time. Krejcikova of Czech Republic entered her first Wimbledon final after securing a comeback win over Kazakhstan's Elena Rybakina in the semi-finals on Thursday. Paolini of Italy defeated Croatia's Donna Vekic in a fiercely fought semi-final to secure her place in the final. In men's singles, seven-time champion Novak Djokovic has set up summit clash with defending champion Carlos Alcaraz tomorrow. And in another news, in football, the Euro Cup 2024 gears up for its ultimate clash as Spain and England are set to meet in the final tomorrow, late night.
और श्रोताओं अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिवस या आज ही है जिनकी पुण्यतिथि। तो शेफाली कहां से शुरू कर रहे हैं आज?
जी आज हम शुरुआत करेंगे प्रकाश मेहरा से। टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रकाश मेहरा, अ लेजेंडरी इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी फिल्म्स। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मसाला फिल्म्स अलोंग विद नासिर हुसैन एंड मनमोहन देसाई। नाउ व्हाट आर मसाला फिल्म्स? दे बेसिकली रेफर टू अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल जॉनर्स इनटू वन वर्क, सो एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, एवरीथिंग इन वन फिल्म। इन 1968 Prakash Mehra directed Shashi Kapoor, who played a double role in Haseena Maan Jayegi. In 1973, he produced and directed Zanjeer. Now, Zanjeer was the film which was credited with launching the career of Mr. Bachchan as a lead actor. Mehra received a Lifetime Achievement Award from the India Motion Picture Directors Association in 2006. So, let's listen to a song from Zanjeer. Yari hai Iman Mera, Yaar Meri Zindagi.
प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी यारी है।
और आज ही जन्मदिवस है एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का। इनका असली नाम कृष्ण सरीन था। 50 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से ये एक थी। इन्होंने 1951 में प्रदर्शित फिल्म काली घटा से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। विवाह के बाद बीना रॉय ने अपने पति के साथ मिलकर कई फिल्मों का निर्माण किया। 1968 में बनी अपना घर अपनी कहानी बीना राय की अंतिम फिल्म थी। उससे पहले इन्होंने 28 फिल्मों में अपने जमाने के सबसे बड़े अभिनेताओं जिनमें दिलीप कुमार, देवानंद आदि शामिल थे, इन सभी के साथ काम किया। अपनी फिल्म घूंघट के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस मौके पर सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा,
ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया।
And dear listeners, today is also the birth anniversary of Astad Debu, an Indian contemporary dancer and choreographer. He was considered a pioneer of modern dance in India. Throughout his career, he collaborated with artists including Maya Plissetskaya, the famous ballerina, and Pink Floyd, the renowned musician. Astad Debu was awarded the Sangeet Natak Akademi Award in 1996 and Padma Shri in 2007. His explorations in modern dance techniques and Indian forms like Kathakali led to the creation of a dance style unique to him, an amalgamation of Indian classical dance and Western group dance techniques. He's also known for choreographing the 2004 Hindi film by painter M.S. Hussain Meenakshi. In the background, you can listen to one of his dances and the musical track for that.
और आज ही जन्मदिवस है केसरबाई केरकर का। ये भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। ये बहुत ही रोमांचक कमाल की बात है कि सिर्फ 8 साल की उम्र से इन्होंने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। इन्हें कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि शेफाली इनके नाम है कि इनके एक गाने जात कहां हो की रिकॉर्डिंग को डिस्क में शामिल करके अंतरिक्ष में भेजा गया। हम आपको वही रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं।
And dear listeners, today is also the death anniversary of Neelu Phule, an Indian actor known for his roles in Marathi movies and Marathi theatre as well as in Hindi movies. He was most prominently seen playing the roles of notorious villains in the movies, and he was also awarded the Sangeet Natak Akademi Award in 1991. And in films, Neelu often played villains, most notably his portrayal of Sakharam Binder. And Sarfirozi, wo itna acha role play karte the ki us zamane mein log dar ke mare apne bachcho ka naam Neelu Phule nahi rakhte.
क्या बात है।
और बस इसी के साथ उनका काम बहुत ही सराहा गया एंड हिज वर्क वॉज ग्रेटली कॉम्प्लीमेंटेड। सम ऑफ हिज नोटेबल फिल्म रोल्स इंक्लूड हिंदू राव ढोंडे पाटिल, अ जमींदार एंड अ शुगर टाइकून इन सामना, अ पार ड्रंक पॉलिटिशियन इन महेश भट्ट सारांश।
और आज ही पुण्यतिथि है एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की। ये इंडियन टीम का हिस्सा रहे थे जिसने साल 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। यशपाल शर्मा 1978 से 1985 तक भारतीय टीम के लिए खेले।
And today is also the birthday of Wolf Soyinka, a Nigerian playwright, novelist, poet and essayist, who is also a winner of Nobel Prize in Literature.
और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रहे हैं कि हम आपसे विदा लें, तो सर फिरोजी और शेफाली सिंह को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।